And it reads like this, and Elijah the Tishbite, who was an inhabitant of
और अब इस हिस्से को पढ़ते हैं। और एलिया तशबी जो जलाद के परदेशियों में से था, अखियब से कहा कि खुदावंद इसराइल के खुदा की हयात की कसम, जिसके सामने मैं खड़ा हूँ, इन बरसों में न ओस पड़ेगी न मी बरसेगा जब तक मैं न कहूँ। और खुदावंद का यह कलाम उस पर नाजिल हुआ कि यहाँ से चल दे और मशरिक की तरफ अपना रुख कर और क्रेत के नाले के पास जो यर्दन के सामने है, मेरे कहने का मतलब है जा छुप और तू उसी नाले से पीना, और मैंने कवों को हुक्म किया है कि वो तेरी परवरिश करें। सो उसने जाकर खुदावंद के कलाम के मुताबिक किया, क्योंकि वो गया और क्रेत के नाले के पास जो यर्दन के सामने है रहने लगा, और कवे उसके लिए सुबह को रोटी और गोश्त और शाम को भी रोटी और गोश्त लाते थे, और वो उस नाले में से पिया करता था। और कुछ अरसे के बाद वो नाला सूख गया, इसलिए कि उस मुल्क में बारिश नहीं हुई थी। तब खुदावंद का ये कलाम उस पर नाजिल हुआ कि उठ और सैदा के सारपेत को जा और वहीं रह, देख मैंने एक बेवा को वहाँ हुक्म दिया है कि तेरी परवरिश करे। सो वो उठकर सारपत को गया, और जब वो शहर के फाटक पर पहुंचा तो देखा कि एक बेवा वहाँ लकड़ियाँ चुन रही है। सो उसने उसे पुकार कर कहा, जरा मुझे थोड़ा सा पानी किसी बर्तन में ला दे कि मैं पीऊं। और जब वो लेने चली तो उसने पुकार कर कहा, जरा अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी मेरे वास्ते लेते आना। उसने कहा, खुदावन तेरे खुदा की हयात की कसम, मेरे यहाँ रोटी नहीं, सिर्फ मुट्ठी बराटा एक मटके में और थोड़ा सा तेल एक कुप्पी में है, और देख मैं दो एक लकड़ियाँ चुन रही हूँ ताकि घर जाकर अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं और फिर मर जाएं।
And Elijah said unto her, Fear not, go and do as thou hast said.
और एलिया ने उससे कहा, मत डर, जा और जैसा कहती है कर, पर पहले मेरे लिए एक टिकिया उसमें से बनाकर मेरे पास ले आ, उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बना लेना।
For thus saith the Lord God of Israel,
क्योंकि खुदावंद इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि उस दिन तक जब तक खुदावंद जमीन पर मी ना बरसाए, ना तो आटे का मटका खाली होगा और ना तेल की कुप्पी में कमी होगी। सो उसने जाकर एलिया के कहने के मुताबिक किया, और ये और वो और उसका कुंबा बहुत दिनों तक खाते रहे, और खुदावंद के कलाम के मुताबिक जो उसने एलिया की मार्फत फरमाया था, ना तो आटे का मटका खाली हुआ और ना तेल की कुपी में कमी हुई।
For this morning's talk, just before going overseas, I've chosen
बैरून मुल्क जाने से पहले आज सुबह जिस उन्वान को मैंने बयान करने के लिए चुना है वो है खुदा के मुतल्लिक पुर यकीन होना। और अब ऐ खुदावंद अपने कलाम को बाबरकत बनाना जबकि ये लोगों तक पहुंचता है, और होने दे कि रूहुल कुस हमारे जहन और ख्यालात को अपने कब्जे में ले ले और हमें उसकी मुलाकात के लिए तैयार करे, क्योंकि हमने उसे अपने दरमियान आने की दावत दी है।
For we do not come to the house of the Lord to be seen or to see, but to learn of thee.
क्योंकि हम खुदा के घर में औरों को देखने या दिखाने के लिए नहीं आते, बल्कि हम तेरी कुदरत को जानने और तेरे तरीकों और असबाब को सीखने के लिए आते हैं, ताकि हम इस काबिल हो जाएं कि जिंदगी की आने वाली परेशानियों का इस यकीन दहानी के साथ सामना कर सकें कि खुदा यकीनन है। खुदावन ये मंजूर फरमा, हम ये यस्सु के नाम में मांगते हैं, आमीन।
It was so hot and dusty, and people was in the street starving, and the
वो सुबह बहुत ही भयानक थी। मौसम बहुत गर्म और धूल से भरा था और लोग गलियों में भूख से मर रहे थे और जमीन बहुत तप रही थी जैसे कि जल जाने को तैयार हो। ये सब कुछ लोगों की बद इखलाकी और उनके गुनाहों की वजह से हुआ था।
You see, Ahab was reigning in Israel at the time or over Israel. And he was
आप देखें कि उस वक्त अखियब इसराइल पर बादशाही कर रहा था और इसराइल में बल्कि वो इसराइल के सब बादशाहों में से ज्यादा बदतरीन था। अखियब की तरह का कोई भी बादशाह शरीर नहीं था, जबकि वो अच्छी सूझबूझ रखने वाला था। उसने अपने सब कामों से खुदा को नाराज करने में कोई कसर न छोड़ी थी जो उसने किए थे। हालांकि उसके पास एक बहुत बड़ा कौमी निजाम था और लोग उसकी बादशाही में बहुत खुश थे, लेकिन ताहाल आप खुदा को नाराज करके ज्यादा देर तक कायम रहने की तवक्को नहीं कर सकते।
Instead of marrying among his own people, he went over and married a sinner.
और फिर उसने अपनी शादी भी अपने लोगों के दरमियान नहीं की थी, बल्कि उसने एक बुतप्रस्त, एक गुनाहगार और बुतों की पूजा करने वाली से शादी की। उसने एजबल से शादी की, वो एक ईमानदार नहीं थी। और एक ईमानदार को कभी भी एक बेईमान से किसी भी हालत में शादी नहीं करनी चाहिए, बल्कि ईमानदारों में शादी करनी चाहिए। मगर अखियब ने ये बुरा काम किया था। इसमें कोई शक नहीं कि एजबल एक खूबसूरत औरत थी और वो इसमें गिर गया कि वो कैसी हसीन नजर आती है, बजाय इसके कि वो क्या थी। यही गलती आज भी बहुत से लोग कर रहे हैं। और वो कौम के लोगों के दरमियान बुत प्रस्ती लेकर आ गई और लोग, काहिन और उनके वजीर उस बड़ी शोहरत की चाहत के शिकार हो गए। और आज हमारे मुल्क की भी बिल्कुल यही हालत है। हम भी शोहरत के तलबगार हैं। इसमें कोई शक नहीं कि उस वक्त काहिनों ने सोचा होगा कि ये सब दुरुस्त ही है, क्योंकि उनकी हुकूमत ने कहा था ये दुरुस्त है। लेकिन मैं इसकी परवाह नहीं करता कि हुकूमत किसको दुरुस्त कहती है, बल्कि वो दुरुस्त है जिसको खुदा दुरुस्त कहता है। और लोगों ने सोचा होगा अगर वो उनकी कुछ दुनियावी चीजों को भी शामिल कर लें तो ये सब ठीक होगा। और शायद कोई मुझसे कहे कि मैं दोबारा कहूं जो मैंने फक्त कहा कि आज भी बिल्कुल उसी तरह की हालत मौजूद है। हो सकता है हम सोचें कि हम तो बुतप्रस्त नहीं हैं, मगर हम हैं और हुकूमत इसकी मंजूरी देती है। लोग आज बुतप्रस्त हैं क्योंकि वो बुतों की पूजा करते हैं। कुछ लोग फिल्मी अदाकारों की पूजा करते हैं क्योंकि वो उनके बुत हैं। कुछ दौलत को पूजते हैं, ये उनके बुत हैं। कुछ टेलीविजन के अदाकारों को पूजते हैं क्योंकि वो उनके बुत हैं। लेकिन जो कुछ भी आप खुदा की जगह पर रखते हैं वो बुत है, चाहे वो जो कुछ भी हो। यहाँ तक के शैतान, जो हमारा बहुत बड़ा मुखालिफ है और बहुत ही चलाक है, कभी कभी हमारे सामने कलीसिया को खुदा की जगह पर रख देता है। हो सकता है आपके पास एक बड़ा चर्च हो, एक बड़ी इमारत हो या एक बहुत बड़ी तंजीम हो, और फिर ये भी हो सकता है कि एक बहुत बड़ी जमात हो, मगर आप अपने दिल में इसे खुदा की जगह ना रखें। किसी भी चीज को अगर आप खुदा की जगह रखते हैं तो वो एक बुत है। और वो लोग जानते थे कि अब वो इतने रूहानी नहीं रह गए जितने के वो दूसरे बादशाहों की हुक्मरानी में थे। फिर भी उन्होंने सोचा कि वो एक मजहबी कौम है, इसलिए सब कुछ बेहतर ही होगा। और ऐसी ही सोच के साथ आज हम भी इस मकाम पर हैं। कुछ महीने कबल मैं अपने एक बहुत ही अच्छे दोस्त से बात कर रहा था और उसने कहा, भाई ब्रहनम, मेरा ख्याल है कि आप बहुत ज्यादा अमेरिका की गलतियां जाहिर करते हैं। उसने कहा, आप हमेशा गुनाह के खिलाफ चलाते और बताते रहते हैं कि खुदा इस कौम को किस तरह सजा देने जा रहा है। मैंने कहा, उसको आदल बनने के लिए सिर्फ यही करना है। उसने कहा, मगर भाई ब्रहनम, आप भूल जाते हैं कि इस मुल्क की बुनियाद कलाम पर रखी गई थी और हमारे आबाओ अजदाद इस जगह पर आए थे और खुदा ने हमें ये विरासत में दी है और हम एक मजहबी कौम है। मैंने कहा, ये सब बातें सच हैं और ये कोई नहीं जानता कि मैं इस कौम की कितनी कदर करता हूँ, लेकिन मेरे भाई जरा देखें, इसराइल भी खुदा की चुनी हुई कौम थी और खुदा ने उस कौम में नबियों और अजीम आदमियों को भेजा, मगर खुदा गुनाह की बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने ऐसा किया, जैसा इसराइल ने बोया वैसा ही काटा, तो वो हमारे साथ भी ऐसा ही करेगा। जो हम बोते हैं वो ही काटेंगे, वो किसी शख्स का लिहाज नहीं करता। और हम ऐसी ऐसी बातें सोचते हैं कि चूंकि ये हमारे बाप दादा ने किया है, इसलिए हम इस पर बसेरा किए हुए हैं, या कैसे काम हमारी कलीसियाओं के अजीम बानियों ने किए हैं, या कैसी कुर्बानियां उन्होंने खुदा के लिए दी हैं, ये सब कुछ अच्छा है और बहुत ही काबिले तारीफ है। लेकिन जो कुछ उन्होंने किया उसके वसीले हम निजात नहीं पा सकते। निजात तो खुदा और इंसान के दरमियान एक जाती मामला है। इसके लिए हम खुदा के सामने अपने आप के जवाब दे हैं, ना कि कलीसिया और कौम के साथ। ये मकाम हमारे मुल्क में भी आ गया है, यहाँ तक कि बहुत रूहानी लोगों के दरमियान भी जो हमारे पास हैं। आप रूहानी मर्द या औरत को लें तो आप उनके दिलों में भी किसी कदर कमी पाएंगे। हम कुछ गुज़िश्ता हफ्तों में से गुजरे हैं। मैं कुछ ऐसी ही चीजों में से गुजर रहा था और मैंने कुछ आदमियों को पाया जिनके बारे में मैं सोचता था कि वो असल हैं। मैंने पाया कि वो अभी तक दुनियावी चीजों को अहमियत देते हैं और वो ये कहते हुए इनके गिर्द घूम रहे हैं, खुदा ने मुझे बहुत बड़ी बड़ी चीजें या वगैरह वगैरह दिया है। खुदा ने ये दिया है, आप झूठी यकीन दहानी कर रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी आसाइश की चीजें कभी कभी खुदा की तरफ से नहीं मिलती हैं। खुदा अपनी बारिश रास्त और नारास्त दोनों पर बरसाता है, लेकिन दुनिया को आज किस चीज की जरूरत है? एक झूठी यकीन दहानी के ईमान की नहीं। अपने आप को झूठी यकीन दहानी जैसी चीज से बाहर निकालें, इसको रूहानी कहने की कोशिश ना करें। बाज़ औक़ात ईमान के जरिए बड़े बड़े मौजज़े होते हैं, तो भी ये रूहानी दिल नहीं होता। क्या हमारे खुदावंद ने ये नहीं कहा था, उस दिन बतेरे मेरे पास आएंगे और कहेंगे, क्या मैंने तेरे नाम से ये या वो नहीं किया? और तब मैं उनको कह दूंगा, ए बदकारो, मेरी नजर से दूर हो जाओ। बदकारी क्या है? जो कुछ आप जानते हो कि ये दुरुस्त है मगर उसे ना करें। वो कहेगा, मैं तुम्हें कभी नहीं जानता था। और हम ऐसे ही दिनों में रह रहे हैं। आज हमें ऐसी बहुत सारी जिस्मानी चीजों की जरूरत नहीं, वो हमारे पास हैं। हमें बड़े बड़े चर्चेज की जरूरत नहीं, हमें बड़े बड़े इज्तमा की जरूरत नहीं, हमें मजीद रेडियो और टेलीविजन की जरूरत नहीं, ہمیں مزید ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں. لیکن آج ہمیں جس کی ضرورت ہے وہ روحانی اشخاص ہیں, چاہے ان کے پاس ایک پیسہ بھی نہ ہو, مگر وہ اپنے آپ کو خدا کے سامنے خاک ساری سے پیش کرنے والے ہوں, اور تب تک دعا کریں جب تک روح انہیں خدا کی بلائی سے مطمئن نہ کر دے اور ایک بیداری ان کے دلوں میں نہ آ جائے, تاکہ ان کا انداز اور ماحول جس میں وہ رہتے ہیں تبدیل ہو جائے. چاہے آپ کے پاؤں میں ایک جوتی کا جوڑا تک نہ ہو, چاہے آپ نے چھتڑے پہنے ہوں, لیکن آپ کے دل کے اندر کوئی خدا کے لیے سریلے گیت گا رہا ہو. میں تو اس حالت کو دنیا کی ساری دولت کے بجائے حاصل کرنا زیادہ پسند کروں گا. بس آپ نہیں کہہ سکتے کہ دنیاوی چیزیں ہی ہمیشہ خدا کی برکت کا نشان ہے. داؤد نے خداوند سے کہا تھا کہ اس نے شریر کو بھی پھلتے پھولتے دیکھا ہے, جس طرح ایک جنگلی درخت پھلتا ہے. لیکن خدا نے اس سے پوچھا, کیا تو نے کبھی اس کے انجام پر غور کیا ہے؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے اچھے کپڑے پہنتے ہیں یا کتنا اچھا کھانا کھاتے ہیں. یہ سب کچھ خدا کی حضوری میں نہیں جائے گا. یہ بدن جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ یہیں ختم ہو جائے گا, چاہے اس کی جتنی بھی حفاظت کی جائے. لیکن انسان کے اندر جو ضمیر ہے وہی زندگی روح کی حالت میں خدا کی حضوری میں متحرک رہے گی. لیکن کچھ باتیں ہم یوں ہی مان لیتے ہیں, ہم سوچتے ہیں ایسا ہی ہوگا کیونکہ ہم اس قوم کے ہیں. اسی طرح اخیب اور سارے اسرائیل نے ان دنوں میں ان باتوں کو لے لیا کہ سب کچھ ٹھیک ہے. ان کے منادوں اور کاہنوں نے بھی یہی کچھ کہنے کی کوشش کی, سب کچھ ٹھیک ہے, سب چیزیں اچھی ہیں. لیکن ان کے درمیان ایک شخص تھا جو غلط باتوں کے خلاف چلا اٹھا, کیونکہ وہ جانتا تھا کہ پاک خدا اس ناپاک مذہب کے جدید رجحان سے مطمئن نہیں ہو سکتا. بس آسمانی خدا آج بھی ویسا ہی ہے, اور ہمارے بڑے بڑے کام اور ہماری ساری محبت جو کہ ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس سے خدا کبھی بھی خوش نہیں ہوگا سوائے ایک مقدس زندگی کے جو اس کے حضور میں گزاری جائے. ہم بڑے بڑے اسکول اور مقبرے اور ہر چیز بنا سکتے ہیں, ہم تنظیمیں بنا سکتے ہیں, ہم بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں, لیکن خدا اس وقت تک مطمئن نہیں ہوگا جب تک ایک انسان کی روح کی تقدیس اس کے مذبح پر نہیں ہوتی اور خدا کے کام کے لیے وقف نہیں ہوتی. اور آپ آج ایسا کچھ نہیں پاتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری دعائیہ عبادات کمزور پڑ گئی ہیں. فقط ایک منٹ دعا کرتے ہیں اور بستر پر جا کر سو جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ دن میں ایک یا دو بار ہم ایسا کرتے ہیں جبکہ ہم سب قصوروار ہیں. ہماری قوم اخلاقی طور پر ختم ہو رہی ہے. ہمارے پاس بلی گراہم اور اورو رابرٹس جیسے لوگ ہیں, لیکن جب تک امریکہ کے دل میں زندہ خدا کے پاس واپس آنے کی پیاس نہیں لگے گی اور زندہ خدا کے زندہ ایمان کا زندہ تجربہ نہیں ہوگا, ہم یوں ہی اپنا سر پھٹکتے رہیں گے یا جیسے کہا جاتا ہے الجھے رہیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ اپنا سینہ چوڑا کر کے اور اپنے کالروں کو کھڑا کر کے گلیوں میں چلیں, اور یہ تمنا ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں ڈاکٹر یا ریورنٹ کہہ کر بلائیں. ہم چاہے دنیا کے سب سے بڑے چرچ کے پادری بن جائیں, اور چاہے ہم اتنے پارسا بن جائیں جتنا کہ ہم بن سکتے ہیں, تاکہ کوئی شخص ہم پر انگلی نہ اٹھا سکے. لیکن جب تک ہمارے اندر کی روح خدا کی آگ سے بھر نہ جائے, اور جب تک کچھ ایسا نہ ہو جائے جو اس کے لیے بیتاب ہو, جیسے پیاسی ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے, ویسے ہی میری روح اے خدا تیرے لیے ترستی ہے جب تک ہمیں اس کا تجربہ نہ ہو. اس لیے کمیونزم اور وغیرہ وغیرہ جو وہ کر رہے ہیں جڑ پکڑتے جائیں گے, اور ہم سب اکٹھے ہو کر بھی انہیں روک نہیں پائیں گے کیونکہ اس کی پیشنگوئی کی گئی ہے. لیکن خدا اپنی کلیسیا کو بلا رہا ہے. کسی طرح اس عورت نے ایلیا کی صلاحیت کو جان لیا تھا, کیونکہ عام طور پر آپ کا رویہ ظاہر کر دیتا ہے کہ آپ کون ہیں. اور پھر یہ بھی تھا کہ خدا کے نبی کی دیکھ بھال کے لیے اسے چنا گیا تھا. یاد رکھیں وہ عورت یہودی نہیں تھی بلکہ ایک غیر قوم تھی.
And the land was burning up. And no doubt that this little woman
और जमीन तप रही थी और इसमें कोई शक नहीं कि उस औरत में ये सलाहियत थी और एक ईमानदार की मानित थी, क्योंकि हम देखते हैं अगर वो इस काबिल ना होती तो खुदा कभी भी अपने नबी की देखभाल के लिए उसे मुकर्रर ना करता, क्योंकि खुदा अपने नबी को कभी भी उस घर में नहीं भेजता जो लायक ना हो। ये चुनाव उसका नहीं था, ये चुनाव खुदा का था। ये औरत की मर्जी नहीं थी बल्कि ये खुदा की मर्जी थी। एलिया तो एक नाले में रह रहा था और कौवे उसे खुराक पहुंचा रहे थे, लेकिन ये खुदा का हुक्म था ताकि कोई बात वकू पजीर हो, और यकीनन खुदा ने उसके लिए एक ईमानदार को भेजा जिसकी फितरत एलिया जैसी हो। वो एक बेवा थी और हम सब जानते हैं कि एक बेवा क्या होती है। जिसका शोहर मर गया हो उसको एक बच्चे को पालने में कितनी मुश्किल होती है। और उस मुल्क में वो लोग अपनी खेती बाड़ी पर इंसार किया करते थे। उनके पास फसल की हिफाजत के लिए ऐसे मंसूबे नहीं थे जो आज हमारे पास हैं, तो भी वो अपनी फसल पर ही इंसार किया करते थे। और उन लोगों के गुनाह और उनकी बद अखलाकी की वजह से मुल्क में कहत पड़ा था और वो सब भूख से मर रहे थे। और हम देखते हैं इसमें कोई शक नहीं कि जब बेवा ने देखा होगा कि मटके में आटा कम कम और कम होता जा रहा है, तो उसने सारी रातें दुआ ही में गुजारी होंगी। और फिर ऐसी हालत आ गई कि उसके मटके में एक मुट्ठी से दूसरी मुट्ठी आटा नहीं बचा था, उसके पास सिर्फ एक मुट्ठी आटा बचा था। मौत उसके दरवाजे पर आ पहुंची थी, क्योंकि कहीं से भी मजीद खुराक मुयस्सर नहीं थी, बल्कि सारा मुल्क ही भूख से मर रहा था। और उसकी कुपी में फक्त एक चमचा भर ही तेल बचा था। उसके और मौत के दरमियान सिर्फ थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा आटा बचा हुआ था, और इस हालत में वो अपनी दुआओं में संजीदा हो गई। अगर आज सुबह हमारे घर के अंदर मौत आने वाली हो और हम इस बात को जान जाएं, तो हम ज्यादा संजीदा हो जाएंगे। और मेरा ईमान है और हम सोचते हैं, हो सकता है शायद उसने पिछली सारी रातों से ज्यादा उस रात दुआ की हो ताकि एक दिन और मिल जाए। वो अपने 3 या 4 साल लड़के के पीले पड़ते हुए होंठों को देख रही होगी और अपने बदन पर निकलती हड्डियों को देख रही होगी, जिनसे चमड़ी भी अब अलग होती जा रही थी, और एक माँ होते हुए ये सब कुछ देखना बहुत ही भयानक था। और फिर भी वो हाथ जोड़े दिन रात खुदा के सामने दुआ कर रही थी, अब हमारे पास ए खुदा एक मुट्ठी आटा और एक चम्मच तेल बचा है। आप जानते हैं ये एक अजीब बात है। काश खुदा इस बात को आप सबके अंदर गहराई से उतार दे। शायद आप दोबारा मुझे मुनादी करते हुए ना सुन पाए। ये आपके लिए एक पैगाम है। ये एक अजीब बल्कि अजीब बात है कि खुदा कभी कभी इस तरीके से काम करता है। आप जानते हैं जब हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं और खुदा की सब बातों को मानते हैं, हम खुदा पर ईमान रखते हैं और ऐसे हालात से गुजरते हैं, तो ये उसकी मर्जी के मुताबिक होता है। और जब हम अपने गुनाहों का इकरार कर चुके होते हैं और अपनी सारी गलतियों को दुरुस्त कर चुके होते हैं जो हमने की होती है, और वो सब कुछ जो हम जानते हैं कर चुके होते हैं, हर एक मुतालबा जो खुदा चाहता है या मांगता है हम उसे भी पूरा कर चुके होते हैं, फिर भी वो खामोश रहता है और हमारी दुआओं का जवाब तक नहीं देता। मुझे यकीन है कि आज सुबह ऐसे ही लोगों से बोल रहा हूँ जो इस मकाम पर पहुंच चुके हैं। इस तरह के मकाम से मैं भी कई एक बार गुजर चुका हूं। जबकि मैंने पीछे अपनी जिंदगी में झांक कर देखा और हर संग को हटा कर देखा, तो मुझे पता चल गया कि मैंने कुछ गलत किया है, तब मैं जाकर इकरार करता हूँ और कहता हूँ, खुदावंद खुदा, अब मैं दुरुस्त चलूंगा और ऐसा ही करूँगा। और फिर वापिस आकर खुदावंद से कहता हूँ, ऐ खुदा, अब तू मुझे जवाब दे। यकीनन मैंने तेरी हर बात को मान लिया है जिसका तूने मुझे हुक्म दिया था, और मैंने सब बातों को दुरुस्त कर लिया है। इस पर भी वो जवाब नहीं देता, और ऐसे लगता है जैसे वो खामोश बैठा हुआ है, जबकि आपको इस बात का यकीन होता है कि वो खुदा है। बेदिल मत हो, फक्त यही बात तो आपके दिल में है जिससे आप खुदा के मुतालिक पुरयकीन हैं। मेरा मतन यही है, कुछ करने से पहले आप पुरयकीन हो, अपने दिल में पुरयकीन हो कि खुदा है। जब आप उसकी हर बात को पूरा कर लेते हैं जो उसने कही थी, और तब आप पुरयकीन हो जाते हैं कि खुदा है, फिर ठीक ईमान काम करना शुरू कर देता है, और ईमान फिर मजबूती से खड़ा हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि खुदा है। और जब आप हर मांग को पूरा कर लेते हैं, आप ईमान रखते हैं कि वो है, तब ईमान मजबूती से खड़ा हो जाता है। हो उसका नाम मुबारक हो। फिर ईमान हिल नहीं सकेगा क्योंकि यकीनन खुदा है और उनको अजर देने वाला है जो जांफशानी से उसकी तलाश करते हैं। अब्राहम टैबरनेकल, काश ये बात तुम्हारे दिल में गहरे तौर पर बैठ जाए और कभी भी ना निकले। अगर आपने खुदा की सारी मांग को पूरा कर लिया है और अपने दिल में ये ईमान रखते हैं कि वो है, तो खुदा सिर्फ आपके ईमान की आजमाइश कर रहा है क्योंकि ऐसा करना उसे अच्छा लगता है। आप अपने गुनाहों का इकरार कर चुके हैं और उसकी मांग को भी पूरा कर चुके हैं जो वो चाहता था, और फिर भी वो खामोश है, तो याद रखें, ईमान कहता है वो है। तब आपका ईमान इस पर खड़ा हो जाएगा बगैर इसको जाने कि ये सब कुछ क्या है, मगर वो जानता है कि वो है और वो पुर यकीन है कि वो है। फिर याद रखें, अगर वो है तो फिर उसका कलाम भी सच्चा होना चाहिए, और अगर वो चाहता है कि आप इन हालात से गुजरें, तो फिर आपको गुजरना है, और फिर उसकी जिम्मेदारी है कि अपने कलाम से आपकी हिफाजत करे। पीछे मुड़कर ये मत कहें, ठीक है, मैं कभी शिफा नहीं पा सकता, मैं हो अपने कमजोर ईमान से ऐसा ना होने दें। अगर आपने हर बात का इकरार कर लिया है और सब कुछ छोड़ दिया है और खुदा की मांग पूरी कर दी है, तो फिर ईमान मजबूती से खड़ा रहेगा और कोई चीज उसे हिला नहीं पाएगी क्योंकि वो है और आप पुर यकीन है। लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले असर नौ जोर हासिल करेंगे, वो उकाबों की मानित बालों पर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। जब आपने उसकी मांग पूरी कर दी है तो फिर इंतजार करें ताकि आपके ईमान का इजहार हो। अगर आपने खुदा की सारी बातें या मांग पूरी कर दी है और आपने मुकम्मल तौर पर सोच विचार कर लिया है और जो कुछ खुदा चाहता था उसकी मर्जी के मुताबिक कर लिया है, तब आपका ईमान ठीक उस पर होगा, और यही है खुदा के मुतालिक पुर यकीन होना। आपको जानना चाहिए कि वो हमारे परखे जाने से मोहब्बत करता है, वो आपके ईमान के रद्दे अमल से मोहब्बत करता है। क्या आप ये जानते हैं? खुदा देखना चाहता है कि आपका रद्दे अमल क्या होगा। जब आप कहते हैं, ऐ खुदावन, मैं ईमान रखता हूँ तू ही मेरा निजात दहिंदा है, मैं ईमान रखता हूँ तू ही शाफी है, मैं ईमान रखता हूँ तू ही वाहिद है जो रूहुल कुछ देता है, और जिन चीजों की मुझे जरूरत है तू ही वो है जो मुहैया करता है, फिर आप अपने गुनाहों का इकरार करते और वादा करते हैं, अगर वो मुझे ठीक कर देगा तो मैं खुदा के लिए ये करूँगा, और फिर जब ऐसा कुछ नहीं होता तो फिर आप एक बुजदिल की तरह भाग जाते हैं। खुदा ऐसे लोग नहीं चाहता, और फिर वो किसी भी तरह आपको इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसके पास कोई तरीका नहीं कि आपकी दुआओं का जवाब दे, क्योंकि उसके पास जवाब देने का एक ही तरीका है और वो ईमान है। फिर अचानक जब आप वापस लौट जाते हैं तो फिर वो जवाब नहीं देता, मगर सच्चा हकीकी ईमान कायम रहता है और पुर यकीन होता है कि खुदा है, उसके मुतालिक पुर यकीन हो। और अगर खुदा आपको अपने गुनाहों से इकरार करने और कुछ करने को कहता है और इसी तरह आप करते हैं, तो ईमान कहता है वो है, तो फिर ये यकीनन कुछ होने जा रहा है। आपकी दुआ जरूर ही कबूल हो रही है। ओ, मैं उम्मीद करता हूँ आप इसे नहीं खोएंगे। जब आप खुदा के लिए पूर्ण यकीन हो जाते हैं, तो खुदा भी यकीनन अपना कलाम पूरा करता है। वो सिर्फ आपको परखने के लिए इंतजार करता है। उसने ऐसा कई बार किया है। आइए एक या दो मिसालों को देखते हैं। आइए उन अब्रानी बच्चों को देखते हैं। वो किसी मूरत के आगे नहीं झुके। खुदा को उन पर पूरा भरोसा था। और जब उन्होंने सुना कि उन्हें आग की भट्टी में डाला जाना है, तो उन्होंने कहा, हमारा खुदा इस आग की भट्टी में से हमें निकालने के काबिल है, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं भी करता तो भी हम तुम्हारे किसी बुत के आगे नहीं झुकेंगे। देखें, वो खुदा के मुतल्लिक पुर एतमाद और पुर यकीन थे। वो जानते थे कि वो यहोवा है। वो जानते थे वो दुआओं का जवाब देता है। मगर उनके मामले में ये था, खा वो सुने या ना सुने, ये बेहतर ही होगा। बस उन्होंने फक्त अपनी बात कही, अपने गुनाहों का इकरार किया और मौत को गले लगाने के लिए चल दिए। जब वो आग की भट्टी की जानिब जा रहे थे, तो वो इस तरह थे कि वो पूर्ण यकीन है कि अगर खुदा उन्हें जलने भी देता है, तो भी उन्हें कयामत के रोज दोबारा जिंदा कर लेगा। वो खुदा के मुतल्लिक पूर्ण यकीन थे, क्योंकि वो जानते थे खुदा जो कुछ भी करेगा उनके भले के लिए ही होगा। और जब हम खुदा के मुतल्लिक पूर्ण यकीन होते हैं, तो हम जानते हैं कि खुदा जो कुछ हमारे लिए करता है, वो हमारी भलाई के लिए ही होगा। बस उन्होंने बयान दिया, क्योंकि वो पूर्ण यकीन थे, और वो सीधे उस आग की भट्टी में चले गए, और खुदा ने उन्हें जाने दिया और उन्हें देखता रहा, क्योंकि वो उनके रद्दे अमल को देखना चाहता था। जब बादशाह ने पूछा, क्या जब तुरही बजाई गई, तुम मूरत के आगे झुके थे? उन्होंने जवाब दिया, नहीं, हम नहीं झुके थे। यही आपका ईमान है जो ऐसे वक्त में कायम रहता है। अच्छा, तो फिर तुम नहीं झुके? क्या तुम मेरे फरमान को नहीं जानते? जी हाँ, हम आपके फरमान को जानते हैं। मेरा फरमान है कि भट्टी की आग 7 गुना और तेज कर दी जाए और तुम्हें वहाँ फेंक दिया जाए। क्या अब तुम उसे सजदा करना चाहोगे? नहीं, हम नहीं झुकेंगे। यही उनका ईमान था। खुदा ने कहा, ठीक है, अब मैं देखूंगा कि वो क्या करते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि इनके ईमान का रद्दे अमल क्या होता है। बस बादशाह ने हुक्म दिया, इनके हाथ और पांव को बांधो और भट्टी की तरफ ले जाओ। और उन्हें भट्टी तक ले जाया गया और तेज आग उनके सामने थी। खुदा अभी तक चुपचाप उन्हें देख रहा था, लेकिन वो पुर यकीन थे कि खुदा है। वो अपना इकरार पहले ही कर चुके थे। वो जो कुछ जानते थे उसके मुताबिक वो पहले ही दुरुस्त कर चुके थे। अब वो पुर यकीन थे कि खुदा है, इसलिए वो सीधा आग की भट्टी की जानब चल दिए। और फिर एकदम आखिरी लम्हों में खुदा वहाँ एक हवा के रथ पर बैठकर आसमान से नीचे उतर आया और उनके लिए हवा से शोलों को बुझा दिया। उन्हें तसल्ली दी, उनसे बातें की। खुदा आपके ईमान को इस हद तक जाने देता है जहाँ से आप रद्दे अमल करें। पुराने ऐदनामे में अय्यूब को देखते हैं, जिस पर शैतान ने, जो हमारे ऊपर इल्जाम लगाने वाला है, उस पर इल्जाम लगाया था कि उसने पोशीदगी में गुनाह किए हैं। लेकिन अय्यूब जानता था कि उसने कोई गुनाह नहीं किया। वो जानता था जो कुछ उसने किया उसका उसने इकरार कर लिया था और सौख्तनी कुर्बानी गुजरानी थी। यही खुदा की मांग थी। खुदा यही सब कुछ चाहता था कि अपने गुनाहों का इकरार करे और सौख्तनी कुर्बानी चढ़ाए। और अय्यूब ये सब कुछ पहले ही कर चुका था। और शैतान ने कहा, ये एक अमीर आदमी है, इसलिए मैं इसके ऊंट ले लूंगा और इसकी भेड़े भी ले लूंगा। और आखिरकार उसने उसके बच्चों को भी छीन लिया जो उसके दिल के टुकड़े थे। अय्यूब एक वफादार की तरह इस पर भी खामोश खड़ा रहा, क्योंकि वो जानता था कि खुदा है। वो बिल्कुल पुर यकीन था कि खुदा है, क्योंकि उसने उसकी मांग को पूरा किया था और उससे गुफ्तगू की थी। उसने खोज कर यही पाया कि सौख्तनी कुर्बानी चढ़ाई जाए जो वो पहले ही चढ़ा चुका था। मैंने दिल में सोचा, शायद जब मेरे बेटे और बेटियों ने एक ज़ियाफ़त की थी, तो शायद हो सकता है उन्होंने पोशीदगी में अपने दिल में गुनाह किया हो। बस मैं उनके लिए सौख्तनी कुर्बानी चढ़ाऊंगा और उनकी गलतियों का इकरार करूंगा। ओ खुदा, जब इंसान तेरे कहने के मुताबिक सभी कुछ कर लेता है, तो वो पुर यकीन हो जाता है कि खुदा है। जो उसका जवाब देगा। ईमान उसे हमेशा खींच लाता है। जब आप वो कर लेते हैं जो जानते हैं कि दुरुस्त है, जब आप खुदा की मर्जी को पूरा कर लेते हैं, जब आप गुनाहों का इकरार करके उनको तर्क कर लेते हैं और खुदा से तलाफी कर लेते हैं, तो फिर मुझे परवाह नहीं कि वो कितना खामोश है, वो अब भी खुदा है। ईमान रखकर इंतजार करें। आपने अपना काम कर लिया है, अब वो आपके ईमान को आपके अमल के साथ देखना चाहता है, वो देखना चाहता है अब आप क्या करेंगे। अगर आपके लिए दुआ की गई है और आपको मखसूस किया गया है, तो खुदा फिर ये देखने के लिए इंतजार करता है कि आपका ईमान क्या करेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि अगले दिन कहीं और अगले इतवार कहीं और इसके बाद शहर में किसी और शिफा देने वाले के पास दौड़ जाते हैं। वो आपके ईमान का रद्द अमल देखने के लिए इंतजार करता है। कहीं ऐसा ना हो कि आप अगले ही दिन पीछे लौट जाएं और कहें, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा, मुझे लगता है मुझे शिफा नहीं मिली। आप अभी तक तैयार ही नहीं है, क्योंकि आपका ईमान ही नहीं कि वो खुदा है। मैं परवाह, शायद आप कहें, भाई ब्रहनम, मैं आपके साथ मुत्तफिक नहीं। आपका अपना रवैया बता देता है कि आप क्या हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। अगर एक आदमी अपने आप को मसीही कहता है और फिर भी शराब पीता और सिगरेट पीता और जुआ खेलता और गंदे मजाक करता है और कहता है बाइबल का कुछ हिस्सा ठीक है और कुछ गलत है, चाहे वो अंजील की मुनादी क्यों ना कर रहा हो, अगर वो बाइबल के कुछ हिस्से का इनकार कर रहा है, तो वो अभी तक एक गुनाहगार है, वो अभी तक ठीक नहीं हुआ है। लेकिन जब आप बरमला इकरार करते हैं कि खुदा आज भी वही खुदा है और फिर आपकी जिंदगी पूरी तरह उसके हाथों में होती है, फिर आप कहते हैं, खुदावन मैं मिट्टी हूँ, तू कमहार है, फिर जो चाहे उससे मांगे, फिर ईमान जुम्बश नहीं खाएगा बल्कि मजबूती से कायम रहेगा। अगरचे हालात इधर उधर होते रहें, मगर ईमान को कभी जुम्बश नहीं होगी, क्योंकि आप पुर यकीन है कि खुदा है, और अगर खुदा है तो वो अपना वादा पूरा करेगा। वो ऐसा नहीं कर सकता कि वो वादा करे और फिर उसे तोड़ दे। अगर वो खुदा है तो उसे अपने वादे को पूरा करना है। हो, मुझे ये बात अच्छी लगती है, वो अपने वादे के साथ खड़ा है। अय्यूब अपनी कुर्बानियां गुजरान चुका था और सब कुछ कर चुका था, उसे मालूम था कि वो ठीक है। और उसके पास दूसरी तंजीमों के चर्ची से कुछ मेंबर आए और कहा, अय्यूब तू मान ले कि तू गुनाहगार है, क्योंकि अगर तू गुनाहगार ना होता तो खुदा तुझे इस तरह सजा ना देता। मगर अय्यूब ने कहा, मैं अपना इतराफ कर चुका हूँ और खुदा के हजूर सोख्तनी कुर्बानी चढ़ा चुका हूँ, मैं एक गुनाहगार नहीं हूँ। वो जानता था कि वो किस मकाम पर खड़ा था। तब उसकी हालत बिगड़ गई और बिगड़ गई और बिगड़ गई, फक्त जितनी के बिगड़ सकती थी। अय्यूब को नीचे लाने की कोशिश की गई ताकि ऐसे मकाम पर लाया जाए कि खुदा का इनकार करे और सोख्तनी कुर्बानी का भी इनकार करे। जिस लम्हे आप अपने इकरार के मुताबिक अमल करना शुरू करते हैं, तो आपकी कमजोरियां आपको दिखाई जाती हैं, ताकि आप खुदा पर शक करें। अगर आप खुदा से कुछ मांगते हैं और साथ साथ शक भी करते हैं, तो आप शकी हैं, ना के ईमानदार। अय्यूब जानता था कि वो कहाँ खड़ा है और उसके ईमान की बुनियाद मजबूत थी। इसमें हैरानगी नहीं कि प्रूडेंट ने अपनी जिंदगी के आखिरी घड़ियों में कहा, मैं मजबूत चट्टान मसीह पर खड़ा हूँ, बाकी सारी जमीन डूबने वाली रेत है। अय्यूब अपने इकरार की मजबूत चट्टान पर खड़ा था, हालांकि उसकी प्यारी बीवी ने भी मुंह मोड़ लिया था। जब उसकी सेहत बिगड़ गई और उसके सारे बदन पर फोड़े निकल आए, तब उसने अपने बदन को खुरचना शुरू कर दिया और अपने जन्मदिन पर लानत की और कहा, काश आफताब ना चमके, काश महताब रात को जम जाए। उसकी बीवी ने कहा, अय्यूब तू कितना बदनसीब है, तू क्यों नहीं खुदा पर लानत करता और मर जाता। अय्यूब ने कहा, तू क्यों नादान औरतों से बात करती है। वो पूर यकीन था कि खुदा है और वो उसकी मांग पूरी कर चुका है। ओ, मैं रूह में महसूस कर रहा हूँ। वो जानता था जो कुछ खुदा की मर्जी थी वो उसको पूरा कर चुका है और यही तय पाया था। खुदा उसके ईमान को परख रहा था। वो आपके ईमान को भी परखेगा, वो मुझे भी परखेगा। जब हम उसके तकाजे पूरे कर देते हैं, तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले, तो तुम रूल कुछ इनाम में पाओगे। ये उसका वादा है। अगर तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाओ ताकि वो तेल मलकर दुआ करे, और जो दुआ ईमान से की जाएगी उससे बीमार बच जाएगा और खुदा उसे उठा खड़ा करेगा। ये तय है। एक दूसरे के सामने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो। आपने खुदा के तकाजे पूरे कर दिए हैं। ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे। वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई जुबानें बोलेंगे, सांपों को हाथों में उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज पियेंगे तो उन्हें कुछ जरर ना पहुँचेगा। अगर वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। ये तय है। खुदा के मुतल्लिक पुर यकीन होना, अपने दिलों में पुर यकीन हो कि आप ईमान रखते हैं कि यही खुदा का कलाम है, जैसे अय्यूब ने किया। उसकी बीवी ने कहा था, तू क्यों खुदा पर लानत करके मर नहीं जाता? क्यों तेरी हालत दिन ब दिन बुरी होती जा रही है? इस तरह शैतान आपको उलझाना चाहता है। क्यों तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा जब से तुमने दुआ करवाई है? जब मुनादों ने तुम पर दुआ की तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, तुम वैसे के वैसे ही हो। यही बात है कि वो मुनाद ठीक नहीं। मसला उस मुनाद का नहीं है, मसला तो आपके ईमान का है जो आप जिंदा खुदा पर रखते हैं। वो कितना बड़ा है इससे कोई मतलब नहीं। मुनाद क्या है? मतलब इससे है कि खुदा क्या है। वादा भी किसी मुनाद ने नहीं किया, वादा तो खुदा ने किया है। अब ये बात मुनाद पर नहीं बल्कि ये बात खुदा पर है, और आपके ईमान का यकीन है कि खुदा है। इसलिए खुदा के मुतल्लिक पुर यकीन हो कि यकीनन खुदा मौजूद है, और ये खुदा का कलाम है, और खुदा अपने कलाम में है। और अय्यूब ने कहा, तू क्यों नादान औरतों किसी बातें करती है? उसने कहा, खुदावन ने दिया, खुदावन ने लिया, खुदावन का नाम मुबारक हो। वो पुर यकीन था कि खुदा है, और जो ही उसने अपने मुंह से ऐसा कहा तो गर्जे गर्जने और बिजली चमकने लगी, और खुदा ने जुम्बश की और मंजर पर आ गया। ऐसी पुकार हमेशा उसे मंजर पर ले आती है। वो काफी अरसे से खामोश बैठा हुआ था, वो आज भी यही कर रहा है। वो ये दोज की अमरीकी ग्रोहों को जो रयाकारी से चर जाते हैं देख रहा है। मैं गुस्से में नहीं, मगर गुनाह हर उस शख्स को गुस्से में ले आता है जिसका खुदा के साथ दुरुस्त राब्ता होता है। मैं कौम पर गुस्सा नहीं करता, लोगों पर गुस्सा नहीं करता, बल्कि मैं अबलीस पर गुस्सा करता हूँ जिसके सबब से लोग इन चीजों से अंधे हो चुके हैं। ये अंधे पास्टर और मुनाद जो इन्हें इंसान की बनाई गई इल्मे इलाहियात से मिले हैं, आपको नए सिरे से पैदा होना जरूर है, फिर खुदा अपना कलाम पूरा करता है। देखते रहें कि वो इन्हें कैसे मुतमिन करता है। आपको ये बात बेहतर मालूम होनी चाहिए कि ये खुदा की तरफ से है कि वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल नहीं करेंगे। वो बेचारी गरीब औरत ये जानती थी कि वो खुदा है। जैसे ही उसके आटे का मटका खाली 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 होता जा रहा था, और हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे थे, लेकिन खुदा ऐसे होने दे रहा था क्योंकि वो इस तरह होने को पसंद करता है। वो ये पसंद करता है कि आपके ईमान को परखा जाए, ताकि देखा जाए कि तब आपका रवैया कैसा होगा। तब वो आपके लिए और बदतर होने देता है। जब आप मखसूस हों और आपके लिए दुआ की गई हो, तब वो कहता है, शैतान अब आ और इसको आजमा, मैं जानता हूँ ये मुझ पर ईमान रखता है। खुदा हमेशा मुबारक है, हो मेरे खुदाया, अब इसको परख, मैं जानता हूँ इसने मेरे कलाम को कबूल किया है। क्या खुदा आपके बारे में ऐसा कह सकता है? उसने अय्यूब के बारे में ऐसा ही कहा था, कहा तू जो चाहे उसके साथ करना, लेकिन उसकी जान मत लेना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। उसने मेरे सारे तकाजे पूरे किए हैं, उसने सौतनी कुर्बानी गुजरानी है, और जो जो मैंने उसे करने को कहा उसने वो किया है, इस पर ईमान रखता है। अगर अब तू चाहे तो उसको सुलगते अंगारों पर भी लिटा दे। शैतान ने अय्यूब का सब कुछ छीन लिया, मगर खुदा ने उसे वापस दुगना लौटा दिया। यकीनन वो ऐसा करेगा। वो हमारे ईमान को परखता है ताकि देखे कि हम वाकई उस पर ईमान रखते हैं कि वो खुदा है। इसमें कोई शक नहीं कि उस बेचारी औरत ने कहा, मैं जानती हूँ मैं एक गैर कौम से हूँ और इस लायक नहीं, लेकिन मैंने फिर भी दुआ की, मैंने दुआ की। याद रहे, यीशु ने बाइबल में इस औरत के बारे में यूं कहा है, उसने कहा, क्या एलिया के दिनों में बहुत सारी बेवा नहीं थी? मगर वो उनमें से एक के पास भेजा गया और वो गैर कौम से थी। ओ, उसने कहा, मैंने दुआ की। हो सकता है उस रोटी के आखिरी टुकड़े को देखकर, जब मौत उसके दरवाजे से अंदर दाखिल हो चुकी थी, बस वो एक टुकड़ा उसने और उसके बेटे ने खाना था और फिर मर जाना था। मैं देख सकता हूँ कि उसने सारी रात दुआ की होगी। तेज गर्म हवा चल रही थी और जमीन पर दरारें पड़ चुकी थी, और लोग गलियों में रो रहे और चिल्ला रहे थे। उसने अपने घर के चौगिर चक्कर लगाया, फिर उसने अपने छोटे लड़के को देखा, उसने उसके पाजामे को देखा जिसमें से उसके छोटे छोटे पांव बाहर लटक रहे थे। उनके पास यही सब कुछ था। उसने अपनी जुरीदार हाथों को भी देखा। वो घर में बेचैनी से टहलने लगी, लेकिन उसने कहा, मैं जानती हूँ कि वो खुदा है, मैंने अपने गुनाहों से तौबा कर ली है और उसकी सारी मांग पूरी कर दी है। मैं उससे अब अपनी और अपने बेटे की जिंदगी उसके जलाल के लिए मांग रही हूँ। खुदा ने उस पर नजर की। हो सकता है उनमें से कुछ बड़ी पार्टी में रक्स करने जा रहे हों, कुछ अपने आप को संवार रहे हों, जैसे आज के जदीद टेलीविजन पर शो करने वाले हैं, दुनियावी कामों में मसरूफ हों, मगर वो अकेली औरत ही खुदा के साथ थी। दिन निकल आया था। उसने कहा, छोटा बच्चा सारी रात कुछ खाने के लिए चिल्लाता रहा है, मैं इस एक मुट्ठी आटे का क्या करूं? आप जानते हैं कि वो आटा मसीह था। बाइबल मुकद्दस का कोई भी तालिबे इल्म जानता है कि मसीही नजर की कुर्बानी है, और उस नजर की कुर्बानी को खास तरीके से पीसा जाता था, ताकि जब तक अनाज का हर एक हिस्सा पीस कर एक जैसा ना हो जाए, क्योंकि यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है, और हर एक ईमानदार इस पर ईमान रखता है और इससे आराम पाता है। हालेलुया, आपके पास वो सारा पुराना ठंडा मजहब हो सकता है जिसको आप चाहते हो, मगर मेरे लिए, मैं ईमान रखता हूँ मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। मैं तो बेदिन दुनिया में ईमान पर खड़ा हूँ। मैं आज भी ईमान रखता हूँ कि वो कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। उन दानों को चक्की से पीसा जाता था कि एक जैसे हो जाएं, क्योंकि वो यकसा है। वो आज सुबह भी वही खुदा है जैसा वो तब था। वो हमेशा यकसा रहेगा। यही इस आटे का मतलब है, और तेल का मतलब है रुलकुस, जैसा कि हम जानते हैं हिजकेल 4 के मुताबिक, और इसी तरह और हवाला जात के मुताबिक। यही सबब है कि हम तेल से मसा करते हैं, क्योंकि ये रूह है। ये क्या है? मुकद्दस योहन्ना 4 बाप के मुताबिक, बाप ऐसे परस्तार ढूंढता है जो उसकी परस्तिश रूह और सच्चाई से करें। यीशु सच्चाई है, वही नजर की कुर्बानी, और तेल यानी रूह है। और जब रूह और सच्चाई मिल जाते हैं तो फिर कुछ ना कुछ वकू होता है। इन दोनों को मिला दें तो एक रोटी बन जाएगी। हो, आपका ईमान कहाँ है? जब खुदा के कलाम की मुनादी सादगी से की जाती है कि यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है, तो इसमें कुवत होती है। और जब कलाम की रोटी दी जा रही होती है तो आपको इसे तेल के साथ मिलाना होता है, चाहे ये थोड़ा सा ही हो या एक चम्मच ही हो, लेकिन जो कुछ भी है ये हकीकी होना चाहिए। अब ये किसके लिए तैयार किया गया है? ये सलीब के लिए तैयार किया गया है। ये अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार किया गया है। यही कुछ आपको करना पड़ेगा। जब कलाम कर दिया जाता है तो अपनी रूह इसके साथ मिलाएं, तो ये अपने आप को कुर्बान करने वाली कुर्बानी बन जाएगी, और हर दर्द, हर बीमारी और हर एक चीज जो खुदा के कलाम के खिलाफ है रद्द करेगी और उसके साथ कायम रहेगी। फिर डॉक्टर चाहे ये या वो या कुछ भी कहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसके साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि खुदा ने ये कहा है, जब आटा आता है और जो तेल आपके पास है, आप इन दोनों को इकट्ठा मिला दें। अब मैंने एक आवाज सुनी है, और थोड़ा सा दिन निकला है। एक आवाज ने उससे कहा, उठकर बाहर जा और दो लकड़ियां चुन ले। क्या आपने गौर किया? कलाम फरमाता है, दो लकड़ियां, ये सलीब है। उस औरत के पास आटा और तेल था, लेकिन अब उसे एक और अमल करने के लिए बुलाया गया, उसके साथ और काम करे। चाहे आपके पास बहुत ज्यादा आटा या तेल हो जिसकी आपको जरूरत है, लेकिन आपको अपने आप को कुर्बान करने का अमल करना ही होगा। दो लकड़ियाँ, पुराने जमाने में उनके पास आग जलाने का वाहिद यही जरिया था। जब आप एक लकड़ी के ऊपर दूसरी लकड़ी रखकर उनके दरमियान आग जलाएंगे तो उनके दोनों सिरे जल्दी से जल जाएंगे। इंडियन लोग भी इसी तरह आग जलाते थे। मैंने खुद भी पूरी पूरी रात आग जलाकर गुजारी है, फक्त कुछ लकड़ियां लेकर और एक को इस तरफ और दूसरी को उसके ऊपर रखकर आग लगाकर धकेलते रहते हैं तो आग जलती रहती है। बाइबल कहती है दो लकड़ियां, और ये दो लकड़ियां सलीब थी। आवाज ने कहा बाहर जा और दो लकड़ियां ले आ, और उस वक्त उस पहाड़ पर एक आवाज की गर्ज हुई, और नबी से कहा गया, जिस शहर में जाने का तुझे हुक्म दिया गया है उस शहर में चला जा। ओ मेरे खुदाया, दोनों ने हुक्म माना था, कुछ न कुछ तो होना था, क्योंकि वो दोनों हुक्म की ताबेदारी कर रहे थे। अगर मुनाद कलाम की मुनादी करता है और एक इंसान उसे कबूल करता है और ईमान रखता है और उस पर अमल करता है, तो फिर कुछ न कुछ होता है। अगर आप एक गुनाहगार हैं तो आप निजात पाएंगे, अगर बीमार हैं तो शिफा पाएंगे, क्योंकि ये खुदा का वादा है। अगर हम खुदा के मुतल्लिक पुर यकीन हो जाएं, जैसे ही हम खुदा के मुतल्लिक पुर यकीन होते हैं, तो उसे वाकई ही अपने कलाम को पूरा करना होता है। उसे हुक्म दिया गया था, शहर में जा کیونکہ میں نے ایک بیوہ عورت کو بھی حکم دیا ہے. ایک رویا نبی پر ظاہر ہو گئی, وہ اٹھ کر چل دیا اور چلتا رہا. وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ کہاں جا رہا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ تو فقط تابعداری کر رہا تھا. ادھر وہ نہیں جانتی تھی کہ لکڑیاں کہاں ملیں گی, مگر دو لکڑیاں کھیت ہی میں کہیں تھی. اس نے آغاز کر دیا. وہ باہر کھیت میں آ گئی. اس نے چاروں طرف دیکھا. اوہ کتنی گرمی ہے. شہر میں سے شور آ رہا تھا. رات کو لوٹ مار کرنے والے آ رہے تھے اور شرابی شراب پی رہے تھے وغیرہ وغیرہ. عورت نے سڑک پر نگاہ ڈالی مگر اسے کچھ نہ ملا. لیکن پھر اسے ایک لکڑی ملی, خود کو قربان کرنے والی, صلیب کا ایک حصہ. پھر اس کو دوسری لکڑی بھی مل گئی. اور پھر جب اس نے دوسری لکڑی کو بھی اٹھا لیا, اوہ یہ ضرور ہی افسردہ وقت تھا, کیونکہ موت دروازے پر بیٹھی تھی. اسے اور اس کے بیٹے کو اس روٹی کے ٹکڑے کو کھا کر مر جانا تھا. یہی سب کچھ تھا. اور بعض اوقات ٹھیک افسردگی میں ہمیں اس کی آواز سنائی دیتی ہے. جب اس نے وہ دوسری لکڑی اٹھا لی اور واپس چلی گئی تو دروازے پر سے ایک آواز آئی اور کہا, میرے لیے برتن میں تھوڑا سا پانی لے آ. اس نے اپنے ہاتھوں میں دو لکڑیاں پکڑے پیچھے دیکھا, جبکہ گوندا ہوا آٹا اور تیل تیار تھا. عورت نے کہا, اس نے اسے تیار کیا ہوا تھا, دونوں کو ملایا ہوا تھا. یہ ایسے ہی ہے جیسے کلام اور روح آپس میں اکٹھے مل جاتے ہیں, تاکہ خود کو قربان کرنے والی صلیب پر قربان کر دیا جائے, تاکہ جو کچھ آپ نے مانگا ہے اس کے خلاف جو کچھ بھی ہے اس کو ادا کر دیا جائے. یہی درست ہے. میں نے یہ تیار کیا ہے. اور دو لکڑیاں چننے گئی تھی اور پھر وہ آواز سنائی دی, میرے لیے ایک برتن میں تھوڑا سا پانی لے آ. اس نے کیا دیکھا؟ اس نے ایک آدمی کو دروازے کی دوسری طرف جھکا ہوا دیکھا. پتلا چہرہ, لمبی داڑھی اور گنجے سر والا آدمی, جس نے پرانا بھیڑ کی کھال کا پٹکا اوڑا ہوا تھا. دروازے کی دوسری طرف دیکھا. دیکھنے میں وہ ایسا لگتا تھا جیسے ایک قسم کا صحیف اور شریف آدمی ہو. عورت نے کہا, میں اسے پانی دوں گی, جیون جل جو آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں, اپنی مرضی سے ہر جگہ اور ہر ایک کو بتا سکتے ہیں. عورت نے کہا, ایک منٹ جناب. وہ اپنے ہاتھ میں لکڑیاں لیے ہوئے پیچھے چل دی اور آواز پھر گونجی, نہ کہ صرف پانی بلکہ اپنے ہاتھ میں میرے لیے روٹی کا ٹکڑا بھی لیا. زندگی کی روٹی, زندگی کا پانی. کیا یہ روٹی کا ٹکڑا اس کی زندگی تھا؟ کیونکہ اس کے بعد فوراً اسے مرنا اور فنا ہو جانا تھا. اپنا پانی اور اپنی روٹی مجھے دے دے. ہم یہاں سے کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ ہم یہاں سے کیا سبق سیکھ سکتے ہیں؟ پہلے تم خدا کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کو تلاش کرو تو ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی. مجھے تھوڑا سا پانی اور ایک روٹی کا ٹکڑا لا دے. تب وہ بہت ہی افسردہ ہو گئی. میں اس کی آواز سن سکتا ہوں, جناب. اس نے کچھ اس طرح کہا ہوگا, میں نے جتنے بھی آدمی دیکھے اور سنے ہیں آپ ان سے مختلف ہیں. مجھے لگتا ہے کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, مگر میرے پاس تو صرف ایک مٹھی آٹا ہے اور ایک چمچ تیل ہے, جس کو گوندھ کر میں ان دو لکڑیوں پر پکانے جا رہی ہوں, اور پھر اسے میں اور میرا بیٹا کھائیں گے اور مر جائیں گے, کیونکہ میرے پاس یہی کچھ ہے. کیا ہم سن رہے ہیں؟ پھر کیا ہوا؟ مگر پہلے میرے لیے روٹی لے آ. پہلے خدا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کون کیا کہہ رہا ہے اور کیا کچھ کہہ رہا ہے. چاہے کوئی کتنی ہی پریشان کرنے والی علامت نظر آ رہی ہو, چاہے جو کچھ بھی ہو, پہلا درجہ خدا کو دیں. اس کے کلام کو پہلا درجہ دیں. ڈاکٹر کہتا ہے میں ٹھیک نہیں ہو سکتا, مگر کلام کو پہلا درجہ دیں. میں تو بہت گناہگار ہوں, میں قصبی ہوں, میں جواری ہوں, میں ایک شرابی ہوں, مگر خدا کے کلام کو پہلا درجہ دیں. اگرچہ تمہارے گناہ کرمزی ہوں, وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے, اور ہرگز وہ ارغوانی ہوں تو بھی ان کی مانند اجلے ہوں گے. پہلا درجہ خدا کا ہے. جا اور پہلے میرے لیے روٹی لے آ. آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ پہلے خدا کو دیں. کیا آپ اپنا سب کچھ اسے خوشی سے دینے کے لیے تیار ہیں؟ میری زندگی, یہ جو کچھ میں ہوں, اب میں 50 سال کا ہوں. کیا تو ولیم برینم مجھے سب کچھ سونپنے کے لیے تیار ہے؟ کیا تم جو چھوٹے بچے ہو اپنا جیون مجھے دینے کے لیے تیار ہو؟ کیا تم تیار ہو؟ کیا تم بیمار لوگ ایسا کر سکتے ہو؟ کیا تم مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہو؟ پہلا درجہ مجھے دو. پہلے میرے لیے ایک روٹی کا ٹکڑا اپنے ہاتھ میں اور تھوڑا سا پانی لے آ. عورت نے اسے دیکھا. پھر کسی نے اس کے اندر سے کہا کہ اس آدمی کی باتوں میں وزن ہے جو یہ کہہ رہا ہے. خدا اپنی بیڑوں کو جانتا ہے. میری بیڑے میری آواز پہچانتی ہیں. وہ جانتی ہیں آیا یہ کلام ہے یا نہیں, آیا یہ سچائی ہے یا کہ نہیں. وہ تابعداری کے لیے مڑی. यही वो बात है जो आपको करनी है। और जब वो नबी की ताबेदारी करने के लिए मुड़ी, जो कुछ उसने करने को कहा था, तो फिर आसमान से ऐसी गर्ज आई जिसको सुनने के लिए हर एक आदमी देख सकता है, क्योंकि नबी की आवाज से गर्ज आती है, जिसे हर एक गुनाहगार और हर एक बीमार सुनने के लिए तैयार होता है। खुदावन यूं फरमाता है, किस कदर हम इसे सुनने के लिए बेकरार हैं, किस तरह लोग मुझे रास्ते में पुकारते हैं, यहाँ इस दरवाजे में आइए, मेरी बेटी यहाँ है, मेरा बच्चा या फला फला बीमार है, कुछ कलाम कह दीजिए। मगर आप कुछ कैसे कह सकते हैं जब तक खुदा ही मुंह में कुछ न डाले? अगर आप कुछ कहेंगे तो ये आपकी अपनी बात होगी, मगर लोग तो ये सुनने के लिए बेकरार हैं। खुदावन यूं फरमाता है, तब वो सहन के अंदर आ गया क्योंकि औरत ने उसकी ताबेदारी की थी, और फिर अफसुर्दगी खत्म हो गई। खुदावन यूं फरमाता है, तेरे मटके से आटा खत्म नहीं होगा और ना ही मटका खाली होगा जब तक खुदावन जमीन पर बारिश नहीं बरसाता। हो, ये कैसी तसल्ली है। उसने रोटी पकाई और उसने नबी को दे दी, फिर वो वापस गई और अपने लिए और अपने बेटे के लिए भी रोटी पकाई। उन्होंने पेट भर कर खाया और पिया, और बहुत ज्यादा उनके लिए बच भी गया। ये कहाँ से आया था, ये कैसे हासिल हुआ था, साइंसी तरीके से मुझे बताएं, ये खुराक कहाँ से आई, वो तेल कहाँ से आया, वो कैसे उस कुप्पी में आया। जब वो हर सुबह उस बर्तन से तेल अंडेल लेती थी और हर रोज मटके से आटा निकाल लेती थी, तो बर्तन खाली हो जाते थे, वो बर्तन खाली होते थे, मगर जब वो वापिस और लेने के लिए जाती थी तो वहाँ मौजूद होता था। ये कहाँ से आता था। खुदा को उसके कलाम के मुताबिक लें, खुदा के मुतल्लिक पुर यकीन हो जाएं, क्योंकि वो खालिक है। हो सकता है आपकी सेहत खराब हो चुकी हो सकता है आपकी रफाकत खत्म हो चुकी हो, उसके कलाम के मुताबिक उसे लें, पुर यकीन हो जाएं कि वो खुदा है। गमगीनी का वक्त जो नजर आ रहा है वो गमगीनी नहीं लगेगा, बशर्ते कि आप वक्त उसके कलाम को लें और उसके मुतल्लिक पुर यकीन हो जाएं कि वही खुदा है। मैंने जर्मनी में एक बार एक तस्वीर देखी और वो हमेशा मेरे जेहन में उबरती रहती है। एक जर्मन पेंटर ने वो तस्वीर बनाई थी, एक तस्वीर जो कि बादलों की सरजमीन कहलाती थी, और जब आप उसे दूर से देखेंगे तो उसमें बहुत ही खौफनाक और अफसुर्दा मंजर नजर आएगा। अगर आप उसे दूर से खड़े होकर देखें तो बस बादल ही जुड़े हुए नजर आते थे, लेकिन जब आप उसको करीब से देखें तो वो मुख्तलिफ थी। ये फरिश्तों के पर थे जो आपस में बज रहे थे और खुदावंद के लिए हालेलुया गा रहे थे। और कभी कभी परेशानी भी ऐसी ही लगती है। अगर आप परेशानी को बहुत दूर से देखेंगे तो ये तारीख दिखाई देगी, लेकिन अगर आप खुदा को उसके कलाम के मुताबिक लेंगे और पूर यकीन होंगे कि वो खुदा है और इस हालत को करीब से जाकर देखेंगे, तो आप फरिश्तों के परों को बजते हुए देखेंगे। वो औरत इब्राहिम की तरह थी जिसको कहा गया था कि अपना सब कुछ कुर्बानी के मजबा पर चढ़ा दे। हो सकता है आज सुबह आपके लिए भी यही बलाहट हो। आप अपने तरीके को तरक कर दें, आप अपनी बेइतकादी को तरक करें, जो कुछ भी आपके पास है उसे तरक कर दें, और फिर तेल और कलाम को लें और इन्हें इकट्ठा मिला दें, खुद को कुर्बान करने वाले मजबा पर रख दें, फिर आप देखेंगे ये पुकार खुदा को मंजर पर ले आएगी। यकीनन ऐसे ही जैसे मैं इस मंबर पर खड़ा हुआ हूँ। जब हम दुआ करने जा रहे हैं तो आइए इन बातों पर गौर करें। आपकी आज क्या जरूरत है? क्या आपकी कोई ऐसी जरूरत है जो जिस्मानी चीजों से बढ़कर हासिल करना चाहते हैं? क्या आपके पास पैसा बहुत कम है, घर का किराया भी अदा नहीं कर सकते? क्या बच्चे नए जूते लेना चाहते हैं मगर आपके पास उन्हें खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं? क्या आपके घर में आटे का मटका खाली हो गया है और तेल कुपी में से खत्म हो गया है? क्या आप अपने खाने के लिए खुराक नहीं खरीद सकते या कोई और मसला है? याद रखें, खुदा ने एक वादा किया है। क्या आप बीमार हैं और डॉक्टर ऑपरेशन के लिए कह रहा है? क्या आपके पास ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं हैं? आप जरूरतमंद हैं? क्या आप एक गुनहगार हैं? क्या आपकी जरूरत बहुत बड़ी है? ये जानते हुए कि अगर खुदा ने आपको बुला लिया तो आप हलाक हो जाएंगे, क्या आप बरगश्ता होकर खुदा से दूर भाग गए हैं? और आप जानते हैं कि आपका ताल्लुक एक चर्च से है, मगर आप जानते हैं कि आप गलत हैं। आपका अपना जमीर आपको कहता है कि आप कलाम के मुताबिक दुरुस्त नहीं हैं और आप जरूरतमंद हैं। کلام کو جاڑی دار زمین پر مت گرنے دے، نہ ہی پتھریلی زمین پر یا سخت تلوں پر، کاش یہ اچھی اور زرخیز زمین پر گرے۔ اگر آپ بیمار ہیں اور آپ اگر ڈاکٹر کہے آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے، تو آپ خدا سے وعدہ کریں کہ آپ پوری زندگی اس کی خدمت کریں گے، اور آپ پور یقین ہو جائیں کہ وہ خدا ہے تو اس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اگر آپ کی کوئی ضرورت ہے تو خدا کی طرف پہلے اپنے ہاتھ اٹھا لیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آئیں دعا کرتے ہیں۔ اے خدا، آج صبح میں اتنا ہی پر یقین ہوں جتنا کہ اس ممبر پر کھڑا ہوا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ اٹھے ہوئے ہاتھوں میں سے کوئی بھی نہیں جس کے بارے میں تجھے پتا نہ ہو، کیونکہ تو خدا ہے۔ تو نے کہا ہے، کیا بہت سی چڑیاں دو پیسوں کی نہیں بکتی؟ تمہاری قدر تو چڑیوں سے بڑھ کر ہے۔ یہ فانی لوگوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ تیرے لیے کتنے بڑھ کر ہیں، جبکہ ان کے لیے تیرا بیٹا یسوع مووا ہے۔ آج صبح تو کتنا زیادہ ان گرتی ہوئی چڑیوں سے بڑھ کر ان اٹھے ہوئے ہاتھوں پر نگاہ کرے گا۔ میں سوچتا ہوں کہ آج صبح کوئی ایک درجن چڑیاں بھی ایک پیسے کی خریدنی پسند نہیں کرے گا، کیونکہ انہیں رکھنے کے لیے مشکل ہوگی، لیکن تو ان میں سے ہر ایک کا دھیان رکھتا ہے۔ تو نے ان کے بدن کے سارے پر گنے ہوئے ہیں، ہمارے سر کے سارے بال بھی تو نے گن رکھے ہیں۔ اے خداوند، دعا کا جواب دے۔ آج صبح ان لوگوں کو پر یقین کر کہ تو ہی خدا ہے اور یہ تیری روح ہے۔ کاش یہ ڈیلا پن اور چمک دمک اور جدید مذہب ان سے دور ہو جائے، کیونکہ یہ کہتے ہیں ہو میں تو فلاں چرچ سے تعلق رکھتا ہوں۔ اے خدا، کاش اب یہ بات ان کے ذہن سے بالکل غائب ہو جائے۔ اس ایک لمحے میں کاش یہ ابدی زندگی کی جھلک کو دیکھ سکیں، اور پھر لوگ اس کی تلاش کے لیے بھوکے ہو جائیں کہ خدا کیا ہے، اور یہ پر یقین ہو جائیں کہ وہ ہے اور وہ اپنے کلام کو پورا کرتا ہے۔ کاش گناہگار لوگ توبہ کرنے کے لیے جلدی کریں اور یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ لینے کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ تو نے وعدہ کیا ہے کہ تو انہیں روح القدس دے گا۔ خداوند، یہ تو نے کہا ہے اور تو اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ یہاں برگشتہ لوگ بھی ہیں جو یقیناً جانتے ہیں کہ تو ہی خدا ہے اور وہ بھٹک چکے ہیں، کاش وہ آج لوٹ آئیں، کیونکہ تو نے کہا ہے اگرچہ تمہارے گناہ کرمزی ہوں اور وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے، اور ہر چند وہ ارغوانی ہوں تو بھی اون کی مانند اجلے ہو جائیں گے۔ اور اگر یہاں بیمار لوگ محسوس کر سکیں کہ تو ہی خدا ہے اور تو اپنا کلام پورا کرتا ہے، اور تو ضرور ہی اپنا کلام پورا کرے گا، وہ اپنے تیل اور روح کو جو ان میں ہے انڈیل رہے ہیں، جو اس بات کا اظہار ہے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں، اور پھر وہ زندگی کی روٹی کلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ مسیح لوگوں کے لیے پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے میں اس لیے ہے کہ وہ دکھائے کہ وہ کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہے۔ کاش لوگ کلام کے ساتھ روح کا تیل ملا کر جو کہ انہوں نے حاصل کیا ہے، مذبح پر اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں اور کہیں، خداوند یہی سب کچھ میرے پاس ہے، میں یہ لے آیا ہوں۔ ہو آپ کو اس کے عوض کتنا زیادہ ملے گا، اور کیسے یہ تاریخ کے خدا کو اس منظر پر لے آئے گا۔ اب یہوہ کیسے یہ دیکھ کر کھڑا ہو جائے گا، اور اس کا دل کتنا خوش ہو جائے گا کہ میرا بیٹا میری تابعداری کرے گا اور کہے گا میں نے اسے پرکھا ہے اور اس نے ثابت کیا ہے کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور مجھ پر ایمان رکھتا ہے، اور یہ پر یقین ہے کہ میں ہوں، کیونکہ یہ کہا گیا ہے خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ اس گھڑی یہ بخش دے، ہم سب کچھ تیرے سپرد کرتے ہیں۔ اور اب جب کہ ہم اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہیں، اور وہ جو ضرورت مند ہیں اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں اور جو مقام چاہتے ہیں۔ اب اگر آپ پر یقین نہیں ہیں کہ وہ خدا ہے، اگر آپ پر یقین ہیں کہ وہ خدا ہے اور وہ اپنا وعدہ پورا کر کے نجات، شفا اور جو کچھ بھی ہے وہ دیتا ہے، اگر آپ پر یقین ہیں کہ وہ خدا ہے تو اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں۔ اگر آپ کسی اور کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں۔ اگر آپ پر یقین ہیں کہ وہی خدا ہے تو اپنی درخواست مقدسوں کے مجمع میں رکھ دیں، آپ وہی کچھ کریں جس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ میں پر یقین ہوں کہ وہ خدا ہے، میں ایمان رکھتا ہوں کہ وہ اپنا کلام پورا کرتا ہے، میں یقیناً اپنی درخواست، میں اسے ٹھیک اب لہو کے نیچے رکھتا ہوں۔ अगर आप ऐसा करते हैं और हर एक गुनाह को नीचे रखते हैं, हर किस्म की बेइतकादी गुनाह है। शायद आप चर्च मेंबर हों, मगर मेरा मतलब आपके गुनाह से है, बेइतकादी से है। आप इसको कुर्बान करने जा रहे हैं। आप इसे कुर्बानी की जगह पर लेकर जा रहे हैं। आप सलीब की जानिब जा रहे हैं। अब आप अपनी सारी बेइतकादी कुर्बान करने जा रहे हैं उसके सामने। ये जानते हैं कि वो है और आप पूर्ण यकीन है कि वो आपकी दुआ का जवाब देने जा रहा है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो अपना हाथ बुलंद करें और ऐसे ही बने रहें।
Lord, thou art God. Here's their oil and their...
खुदावंद तू ही खुदा है। यहाँ पर लोग अपना आटा और तेल गूंथकर लाए हैं, ये सलीब के पास लेकर आ रहे हैं ताकि खुदा की आग इनके दिलों पर उतर आए। अगर इनका वाकई ये इरादा है तो तू इनकी कुर्बानी को बसम कर दे। तू मंजर पर आकर छुपी बातों को खोल दे। तू आसमान से आतशी रथ पर उतर आ। तू जमीन और आसमान को हिला दे और अपने लोगों को अजर दे। अब ये लोग अपने हाथ ऊपर उठाए खड़े हैं और इस बात का इजहार कर रहे हैं कि अपनी इल्तिजा और अपने आप को ठीक तेरे मजबा पर ला रहे हैं। ऐ आसमान और जमीन के खुदा, आसमान और जमीन के मुनसफ, तू जो आसमान और जमीन का इंसाफ करने वाला है, तू रास्तबाजी से इंसाफ करेगा। यकीनन तू अपना कलाम पूरा करेगा। तू जो आदमियों के दिलों को जानता है, औरतों के दिलों को और इन लोगों के दिलों को भी जानता है। ऐ खुदावंद खुदा, मैं अपने हाथ भी ऊपर उठाता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि अब मेरी खिदमत में भी तब्दीली आ गई है और मेरा ईमान है कि ये तू ही है। मैंने तुझे आग के सतून में खड़े देखा है। मैंने तुझे लोगों के दिलों के हाल जाहिर करते देखा है, मगर तू एक मर्तबा भी नाकाम नहीं हुआ। तूने इसका वादा तब किया था जब तू जमीन पर गलियों में ऐसा करता था। तब तूने इन कामों का आगाज कर दिया था और तूने मुझे जहाँ जहाँ दुनिया भर में भेजा वहाँ संभाला है। मैं पुर यकीन हूँ कि तू खुदा है। मैं इसका यकीन करता हूँ। मैं अपने आप को इन लोगों के साथ पेश करता हूँ और जो कुछ मेरे पास है खुदावंद तेरी खिदमत के लिए खर्च करता हूँ। खुदावंद, मैं दोबारा पूरी दुनिया में मुनादी करने का आगाज करने जा रहा हूँ। ऐ खुदा, मेरी इसमें मदद कर। अगर मैंने कभी तुझ पर बेइतकादी की है तो मेरी गलती को माफ कर दे। मुझे मेरी सारी बेइतकादी माफ कर दे। मैं जानता हूँ कि तू है और उनको जो तुझे ढूंढते हैं बदला देता है। इसी तरह आज सुबह मैं अपने लोगों के गुनाहों का इकरार करता हूँ। इनके शकूक और कमजोरियाँ तेरे सामने रखता हूँ। ये लोग अपने हाथ उठाए खड़े हैं। ऐ खुदावंद, मैं इनके गुनाहों का इकरार करता हूँ और हम अपनी कमजोरियों को मानते हैं। तू अपनी मर्जी से हम पर पाक रूह को अंडेल दे क्योंकि तू खुदा है और तू यहाँ हमें कबूल करने और अपनी बाहों में लेने और हमें निजात देने और जो कुछ हमने खो दिया है वो सभी कुछ देने के लिए मौजूद है। अगर ये हमारी सेहत है तो होने दे कि ये 100 गुना बहाल हो जाए। अगर ये हमारी रूह है तो होने दे कि ये रूह कुछ से भरकर चमकती दमकती बन जाए ताकि खुदा के सामने पेश हो सके। अगर हम में बेतकादी है तो खुदावंद होने दे कि ऐसा ईमान आए कि पहाड़ों को हटा दे। खुदावंद ये बख्श दे। हम ईमान रखते हैं कि तू अपने पाक रूह को इस इमारत में अंडेल रहा है। लोगों के ऊपर वो जुम्बश कर रहा है ताकि वो अपने दिलों में जिंदा खुदा को जुम्बश करते कबूल कर सके। ये हम यीशु के नाम में मांगते हैं। मेरा ईमान तुझ पर है। तू बर्रा कलवरी का है। इलाही नजात दहिंदा तू ही है। अब मेरी सुन जबकि मैं पुकारता हूँ। सारे गुनाह मेरे मुझसे दूर कर दे। ना ही मुझे कभी गुमराह होने दे। अपनी जानिब से क्या आप यही चाहते हैं? क्या आप इसे कबूल करते हैं? अपने हाथ उठा कर कहें, मैं इसे कबूल करता हूँ, मैं ईमान रखता हूँ। जब मैं जिंदगी के दुख दर्द में चलता हूँ और रंजो अलम के दरमियान मैं होता हूँ, तुझ ही से मैं रहनुमाई पाता हूँ। तारीकी रोशनी में बदल जाती है, दुख दर्द दूर हो जाते हैं। ना ही कभी मुझे गुमराह होने दे, अपनी जानिब से आए अपने सरों को झुकाते हैं। इस सख्त और दिलों को चीरने वाले पैगाम के बाद जो किसी न किसी तरह सख्त कलामी से दिया गया है, मगर ये सच्चाई है। और अगर आप इनकसारी से ईमान रखते हैं कि जो कुछ आपने मांगा वो आपको मिल गया है, तो फिर कभी भी अपने आप को इस सीधे रास्ते से ना हटाएं, सच्चाई के साथ खड़े रहें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने कितनी बार मुनादी की है, जो कुछ मैं करूंगा या कोई और आदमी करेगा, इसका असर तब तक ना होगा जब तक आप इसे अपनी जाती जायदाद समझकर कबूल नहीं करते। जो कुछ आपने मांगा है उस पर अपने पूरे दिल से ईमान रखें, तो वो आपको मिल चुका है। अगर आपने अपने गुनाहों का इकरार कर लिया है तो खुदा ने आपको माफ कर दिया है, आप मजीद कभी शक ना करें। अगर आप बरगश्ता हैं, तो आपको वापस आज सुबह लाया गया है। अगर आपको रूहुल कुछ चाहिए तो यीशु मसीह के नाम में गुनाहों की माफी के लिए बपतिस्मा लें। ये खुदा का कलाम है, वो इसे किसी चर्च या किसी तंजीम के लिए बदलने वाला नहीं है और ना ही किसी शख्स के लिए। ये इसी तरीके से होना चाहिए। हमें चर्च के तकाजे नहीं बल्कि खुदा की मर्जी को पूरा करना चाहिए, उसके तकाजे पूरे करने चाहिए। यही सब कुछ है जो हमें करना है। उसने कहा था, जो दुआ ईमान से की जाएगी उसके बाइस बीमार बच जाएगा। अगर आप बीमार हैं तो मैंने आपके लिए दुआ की है, आपने भी दुआ की है, और इस पर ईमान रखें, इसे कबूल करें और इस पर कायम हो जाएं। इसी तरीके से आपको करना पड़ेगा, फिर कोई आपसे छीन नहीं पाएगा और फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी अफसुर्दगी नजर आ रही है। आप कहते हैं ठीक है, ये तो ऐसे लग रहा है कि मैं अभी तक बीमार हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फक्त फरिश्तों के पंख हैं जो आपस में मिले हुए हैं। ठीक है, ये तो खुदा की बरकत की एक शक्ल है। ये आपको उदासी नजर आ रही है, आप इसे करीब जाकर देखें और दोबारा इस पर नजर करें। देखें क्या खुदा अपना कलाम पूरा करने के लिए नहीं खड़ा। अब जबकि हमारे सर दुआ में झुके हुए हैं, तो मैं बाकी इबादत को वापिस भाई नेवल के हवाले करता हूँ, जो कि हमारे पास्टर हैं।